लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बारी शहर में प्रेरित यात्रा के दौरान धर्म दर्शन को संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक्का। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 23 फरवरी को इटली के बारी शहर की यात्रा की, जहां उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र की कलीसियाओं के धर्मदर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें भूमध्य सागर के भविष्य एवं बुलाहट पर चिंतन करने का प्रोत्साहन दिया। उन्होने कहा,
cari fratelli, sono lieto di incontrarvi e grato a ognuno di voi per aver accettato l'invito della Conferenza Episcopale Italiana a partecipare a questo incontro.
प्रिय भाइयों, मैं आप सभी से मुलाकात कर खुश हूं और कृतज्ञ हूं कि आप प्रत्येक ने इस सभा में भाग लेने हेतु इटली के कैथोलिक धर्मदर्श सम्मेलन के निमंत्रण को स्वीकार किया है, जिसने भूमध्य सागरी कलीसियाओं को एक साथ लाया है। इस गिरजाघर के चारों ओर नजर डालते हुए मैं एक दूसरी सभा की याद करता हूँ जो यहीं बारी में संपन्न हुए थे और जिसमें ऑर्थोडॉक्स एवं कैथोलिक दोनों ही क्रिश्चियन कलीसियाओं के शीर्ष धर्म गुरुओं ने मुलाकात की थी। कुछ ही महीनों के बाद यह दूसरी मुलाकात है जब हम एकता के इस चिन्ह को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार यदि बारी के महाधर्मदर्श का कुछ ही हमें अनुमति देंगे तो हम बारी को कलीसिया की एकता का केंद्र कह सकते हैं। बारी शहर में धर्मदर्शकों के साथ अपनी मुलाकात का महत्व बतलाते हुए संत पापा ने कहा, बारी में हो रही इस मुलाकात को मैं अर्थपूर्ण मानता हूं, क्योंकि यह शहर मध्य पूर्व एवं अफ्रीका के साथ संबंध के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न लोगों एवं परंपराओं के बीच गहरे निहित रिश्तों का एक स्पष्ट संकेत है। बारी धर्म प्रांत ने क्रिस्ते एकता वर्धक वार्ता एवं अंतर धार्मिक वार्ता को हमेशा प्रोत्साहन दिया है तथा परस्पर सम्मान एवं भाईचारा के संबंध को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल पहले बारी को जानबूझकर चुना था ताकि मध्य पूर्व के क्रिस्त समुदायों के धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात कर उस अवसर को एक खास विचार विमर्श में व्यतीत किया जाए, जिससे कि हमारी बहन कलीसियाएं एक साथ यात्रा कर सकें एवं एक दूसरे के साथ का अनुभव कर सकें। संत पापा ने धर्मदर्शकों से कहा कि इसी संदर्भ में आप भूमध्य सागर की बुलाहट एवं भविष्य पर चिंतन करने, विश्वास के हस्तांतरण और शांति को बढ़ावा देने आए हैं। मारे नोस्ट्रम एक भौतिक एवं आध्यात्मिक स्थल है जहां विभिन्न प्रकार के लोगों के आपसी संपर्क से हमारी सभ्यता ने आकार लिया है। आज भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मद्देनजर इस क्षेत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। इसके विपरीत वैश्वीकरण ने भूमध्य सागर की भूमिका को हितों और महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक धाराओं के एक चौराहे के रूप में उजागर किया है। भूमध्य सागर क्षेत्र एक रणनीतिक क्षेत्र है जिसका संतुलन दुनिया के अन्य हिस्सों पर प्रभाव डालता है। संत पापा ने भूमध्य सागर के आकार के आधार पर इसकी तुलना गलीलिया सागर से की, जिसके द्वारा यीशु के समय एवं आधुनिक समय में समानता की कल्पना की जा सकती है। यीशु ने जिस तरह विभिन्न संस्कृति एवं आस्था के पृष्ठभूमि पर जिया और कार्य किया, उसी तरह हम अपने आप को एक ऐसे विविध वातावरण में पाते हैं जो असमानता के विभाजनों एवं रूपों से आहत है, जो अस्थिरता की ओर ले जाता है। आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संघर्षों के बीच हम एकता एवं शांति का साक्ष्य देने के लिए बुलाए गए हैं। हम ऐसा कलीसिया में अपनी आस्था एवं सदस्यता के कारण करते हैं। हम उस योगदान को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम प्रभु के शिष्य के रूप में भूमध्य सागरी क्षेत्र के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए कर सकते हैं। संत पापा ने कहा कि विश्वास का हस्तांतरण आवश्यक रूप से भूमध्य सागरी क्षेत्र की विरासत पर आधारित है। उस विरासत को ख्रिस्त समुदाय ने धर्म शिक्षा संस्कारों के अनुष्ठान अंतःकरण के प्रशिक्षण तथा प्रभु के वचनों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से सुनने के द्वारा बढ़ाया सुरक्षित एवं जीवित रखा है। संत पापा ने लोकप्रिय भक्ति के लिए विश्वासियों को धन्यवाद दिया तथा कहा कि यह सीधे एवं प्रामाणिक विश्वास की अभिव्यक्ति है। संत पापा ने भूमध्य सागरी क्षेत्र की कला की याद की जो विश्वास एवं सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ प्रकट करती है जिससे आज भी लाखों लोग आकर्षित हैं और इसे सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सके। इस आलोक में सुसमाचार प्रचार को आम हित के लिए प्रतिबद्धता से अलग नहीं किया जा सकता जो हमें शांति निर्माण के रूप में अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा मानवीय एवं आर्थिक संबंध स्थापित करने के बदले घर सेतु फैक्ट्री एवं अस्पताल आदि को नष्ट करना लोगों को मार डालना संसाधन को बर्बाद करना पागलपन है। शांति ही हर मानव समाज का अंतिम लक्ष्य है। शांति का कोई दूसरा तर्कसंगत विकल्प नहीं है क्योंकि शोषण या वर्चस्व के हर प्रयास में प्रणेता एवं उसके लक्ष्य दोनों ही शामिल हैं। शांति निर्माण हेतु न्याय एक अपरिहार्य स्थिति है जबकि न्याय को उस समय कुचल दिया जाता है जब व्यक्ति को जरूरतों में दरकिनार कर दिया जाता और व्यक्तियों एवं समुदायों के अधिकारों पर पक्षपातपूर्ण आर्थिक हित प्रबल होते हैं। संत पापा ने प्रश्न किया यदि समाज जरूरतमंद लोगों के प्रति उदासीन हो जाती है तो इसकी तकनीकी प्रगति का क्या फायदा। उन्होंने धर्मदर्शियों से कहा कि हम अपनी ओर से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता हेतु सरकार को अपनी मांग रखते हुए आवाज उठाएं। अत्याचार जिसका अनुभव सबसे अधिक ख्रिस्त समुदाय को हो रहा है यह हृदय विदारक सच्चाई है जो हमें उदासीन रहने नहीं दे सकती। संत पापा ने भूमध्य सागर को परस्पर मिश्रित करने वाला सागर कहा तथा वार्ता करने की बुलाहट को जीने हेतु प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा संवाद ही हमें अपनी कहानियों को सुनाने एवं एक दूसरे को बेहतर रूप से जानने के द्वारा एक साथ आने पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा से ऊपर उठने में मदद देगा। उन्होंने सुनने की क्रिया को न केवल उदारता कहा बल्कि ईश्वर की आत्मा को सुनने का रास्ता बतलाया जो निश्चय ही दूसरे लोगों में क्रियाशील और जिनकी आवाज उन सीमाओं को पार कर जाती है जिनमें हम अक्सर सच्चाई को विवश करने के प्रलोभन में पड़ते हैं। संत पापा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि स्वीकृति एवं संवाद का ई शास्त्र न केवल हम जो सत्य मानते हैं उसे शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाने का एक साधन हो सकता है बल्कि हमारी शिक्षा को परिभाषित करने वाला बिंदु भी है। यह एक सुसमाचारी शिक्षा की नई समझदारी एवं घोषणा की ओर अग्रसर करती है। इस तरह जो शांति एवं भाईचारापूर्ण स्वीकृति के निर्माण हेतु एक साथ अपने हाथ गंदे करते वे विश्वास के मुद्दे पर लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि सम्मानपूर्ण विचार विमर्श आपसी सहयोग एवं एकता की तलाश करने के रास्ते पर चलेंगे। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने अपने धर्मदक्ष भाइयों को प्रेरित संत पौलुस की मध्यस्थता को सौंप दिया जो भूमध्य सागर पार करने वालों में पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा उनका उदाहरण हमें हमारे अपने समय में विश्वास को सौंपने के हर्षित एवं मुक्तिदायक कार्य में आगे बढ़ने का मार्ग दिखलाए। तब संत पापा ने नबी साइस द्वारा इसराइलों को दी गई भविष्यवाणी की आशा दिलाते हुए कहा वे पुराने खंडहरों और नष्ट किए हुए स्थानों का पुनर्निर्माण करेंगे। वे उन नगरों में बस जाएंगे जो पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। उन्होंने धर्मदर्शियों से कहा कि यही काम प्रभु ने प्यारे भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर से आप सभी को सौंपा है कि आप टूटे संबंधों को पुनः जोड़ें, हिंसा द्वारा नष्ट किए गए शहरों का पुनर्निर्माण करें, जो इस समय निर्जन प्रदेश बन गया है उसे हरी भरी वाटिका में बदलें, निराश लोगों में आशा का संचार करें और भयभीत लोगों को भयमुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करें। तब उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा प्रभु आपके प्रयासों को साथ दे और मेल मिलाप एवं शांति के आपके कार्यों को आशीर्वाद प्रदान करे।
Il Signore accompagni i vostri passi, benedica la vostra opera di riconciliazione e di pace. Grazie.
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गरीबों के लिए उदारता के कार्य में संलग्न प्रो प्रेति संघ के सदस्यों से मुलाकात की और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहन के शब्द कहे। उन्होंने कहा, मानव चाहे उसकी उत्पत्ति या उसकी सामाजिक स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमें सदा उसकी मानवीय अखंडता और उसकी गरिमा का ख्याल और उसकी रक्षा करने की जरूरत है। उक्त बातें संत पापा ने उदारवादी संघ के सालगिरह के अवसर पर वैटिकन में उनसे मुलाकात करते हुए कही, जो संत पेत्रुस के कब्र तीर्थ यात्रा हेतु वैटिकन आए थे। संत पापा ने कलिस्से के चरवाहे स्वरूप अपने परम धर्माध्यक्षीय काल के दो प्रिय तथ्यों, गरीबों हेतु सेवा कार्य के विकल्प और पारिस्थितिकी रूपांतरण का जिक्र किया, क्योंकि और अधिक पाने की भूख, कैरियर और शक्तिशाली होने के कारणों से दरिद्र अपने में त्रस्त हैं। वहीं संघ पारिस्थितिकी के संबंध में अपने को विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न कर रही है। आज हम विभिन्न तरह की चुनौतियों से घिरे हुए हैं, जिसका संदर्भ हमारा परिवार और सामान्य निवास स्थल है। हमारी चिंताओं का केंद्र बिंदु वे लोग हैं जो अपने को युद्धों में घिरे पाते, प्रवासन, गरीबी और अपने को पर्यावरण के विनाश का शिकार पाते हैं। हमारे लिए यह अत्यंत जरूरी है कि हम गरीबों के दमन की रोकथाम करें। हमारे लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम युद्धों की रोकथाम का प्रयास करें जो लोगों के लिए अप्रवासन का कारण बनते हैं। संत पापा ने कहा, आप अपने विश्वास और भरोसे में सुदृढ़ बने रहें, जो दूसरों के हृदय में आशा की ज्योति जलाएगी। आप संत पेत्रुस की भांति साहस में ईश्वर के महान प्रेम को प्रसारित करें, जिसे यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के लिए प्रकट किया है। संत पापा फ्रांसिस ने चालीसा काल का कैथोलिक पत्र सन 2020 जारी करते हुए ख्रिस्तीय समुदाय को मन परिवर्तन के साथ साथ इस अवधि को ईश्वर से वार्ता का समय और अपने समृद्धि को अपने में संकुचित रखने हेतु नहीं वरन दूसरों के साथ साझा करने का आह्वान किया। संत पापा ने लिखा, ईश्वर हमें पुनः इस वर्ष तैयारी का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम यीशु ख्रिस्त के महान रहस्य मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी हो सकें, जो हमारे व्यक्तिगत और ख्रिस्तीय सामुदायिक जीवन की आधारशिला है। हम अपने मन और हृदय से यीशु ख्रिस्त के उस रहस्य पर चिंतन करें, क्योंकि हम जितना खुले रूप में इस पर विचार करते हैं, यह उतना ही आध्यात्मिक शक्ति स्वरूप हम में विकसित होता और उदारता में हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप अपनी निगाहें हाथ फैलाए क्रूसित यीशु की ओर गड़ाए रखें। आप उनके द्वारा मिलने वाली मुक्ति का बारंबार एहसास करें। जब आप पाप स्वीकार करने जाते हैं तो उनकी करुणा पर अटूट विश्वास करें। आप इस बात पर भी चिंतन करें, यीशु ख्रिस्त ने अनंत प्रेम में खून बहाया और अपने को इसके द्वारा शुद्ध होने दें। इस भांति आप अपने में नवीनता का अनुभव करेंगे। संत पापा ने लिखा, वास्तव में ईश्वर हमें अपने में परिवर्तन लाने का एक सुनहरा मौका प्रदान करते हैं, हम इसे यूं ही ना जाने दें। यह अवसर हमें अपने में कृतज्ञता के भाव जागृत करने हेतु मदद करे और हम अपने ढिलाई से ऊपर उठ सकें। पास्का रहस्य को हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनाना हमसे इस बात की मांग करता है कि हम क्रूसित यीशु के प्रति अपने करुणा के भाव रखें, जो अपने को निर्दोष युद्ध प्रभावितों, जीवन में आक्रमण के शिकार हुए लोगों, अजन्म से लेकर वृद्धों और विभिन्न प्रकार के हिंसाग्रस्त लोगों में अपने को व्यक्त करते हैं। आज हमें अपने को एक दूसरे के साथ साझा करने की जरूरत है जो अति जरूरत की स्थिति में है, जिससे हम एक अच्छी दुनिया के निर्माण में सहभागी हो सकें। उदारता में देना हमें और अधिक मानवीय बनाता है, वहीं जमाखोरी हमें अमानव बनाता है, जहां हम अपने स्वार्थ में कैद रहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने इटली के बारी में भूमध्य सागरीय प्रांतों के धर्माध्यक्षकों से मुलाकात के उपरांत मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए शांति और प्रेम की स्थापना हेतु प्रार्थना की। अपने मिस्सा बलिदान के उपदेश में संत पापा ने कहा, यीशु प्राचीन संहिता आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत से परे जाते हैं, जो एक प्रगति को दर्शाता है, जहां हमें बदले की भावना से ऊपर उठने का निमंत्रण दिया जाता है। हिंसा को नहीं कहते हुए यीशु हमें इसके परे जाने का आह्वान करते हैं। प्राचीन संहिता से परे जाने का अर्थ हमारे लिए यही है कि पिता ईश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं, यद्यपि हम उन्हें प्रेम ना भी करें। संत पापा ने कहा, यीशु ख्रिस्त अपने शिक्षा को स्वयं जीते हैं। उन्होंने क्रूस के घोर दुख में भी अपने शत्रुओं की बुराई नहीं की, बल्कि अपनी बाहों को फैलाकर उनका आलिंगन किया। संत पापा ने इस बात को स्वीकार किया कि यीशु की तरह प्रेम करना हमारे लिए कठिन है, फिर भी यदि यह असंभव होता तो वे हमसे इस तरह का प्रेम करने की मांग नहीं करते। हमारे स्वयं के प्रयास से यह कठिन है, यह कृपा है जिसकी मांग हमें करने की जरूरत है। दूसरी चीजों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करने के साथ साथ हमें प्रेम करने हेतु सीखने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। संत पापा ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, आज हम प्रेम का चुनाव करें, हम अपने लिए ईश्वर की चुनौती को स्वीकार करें, जो प्रेम करने की चुनौती है। इस तरह हम अपने में सच्चे ख्रिस्तीय बन पाएंगे और दुनिया के लिए अच्छे मानव। संत पापा फ्रांसिस ने बारी की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान देवदूत प्रार्थना के पूर्व सीरिया में युद्ध संलग्न दलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे हथियारों की आवाज बंद करें और कमजोर तथा सुरक्षाहीन लोगों की रुदन की ओर ध्यान दें। संत पापा ने कहा, हम भूमध्य सागरीय प्रांत के लोगों के जीवन पर चिंतन करते हुए उनके लिए प्रार्थना और शांति का आह्वान करते हैं। वहीं समुद्र के पार एक महात्रासदी छाई हुई है। उन्होंने अपने हृदय की संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात हेतु अपील की कि युद्ध में संलग्न दल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हथियारों के शोर को बंद करें और सुरक्षाहीन और कमजोर लोगों की ओर ध्यान दें। संत पापा ने कहा, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हृदयों को प्रभावित करें, जिससे लोग युद्ध, घृणा और प्रतिकार की भावना पर विजय प्राप्त करते हुए एक दूसरे को ईश्वर में भाई बहनों के रूप में देख सकें, जो अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाते हैं। संत पापा के ये शब्द रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस द्वारा शुक्रवार को सीरिया के युद्धग्रस्त इदलिब प्रांत में तत्काल संघर्ष विराम के आह्वान के बाद आए, जहां उन्होंने कहा, युद्ध में बेकाबू वृद्धि हुई है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।